श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है। इससे पहले कि हम इसका अध्ययन आरम्भ करें, आइए सुनते हैं एक गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी प्रभु के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने लय व्यवस्था की पुस्तक 13 अध्याय उसके 1 से 3 पद तक देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और लय व्यवस्था 13 अध्याय के 4 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, और यदि यह फूल उसके चर्म में उजला तो हो, परंतु चर्म से गहरा न देख पड़े और न वहां के रोए उजले हो गए हों, तो याजक उनको 7 दिन तक बंद करके रखे। मित्रों, इस पद के अनुसार फैसला देने में कोई जल्दी नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर भी क्रोध करने में धीमा है हमारे और उसके संबंध के बीच में। परमेश्वर धीरजवंत भी है, वह पापी को हर प्रकार के अवसर प्रदान करता है। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। इसे हम निर्गमन 34 अध्याय के 6 और 7 पद में पढ़ते हैं। यह पद पुराने नियम से है और नया नियम परमेश्वर के धीरज के विषय में क्या कहता है, इसे हम 2 पत्रस 3 अध्याय के 9 पद में पाते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, जैसे देरी कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबों को मन फिराव का अवसर मिले। मित्रों, आप देखते हैं कि याजक उस मनुष्य को 7 दिन तक बंद रखता है। उसने सोचा कि यह कोढ़ है, परंतु उसके प्रति धैर्य धरता है। और उसी प्रकार परमेश्वर भी पाप के रोग के लिए जगत को समयबद्ध कर रखा है। रोमियो के पत्र 11 अध्याय के 32 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। गलतियों की पत्री 3 के 22 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। अधीन से मतलब बंद कर दिया। मेरे मित्र, वह उसके ब्रह्मांड में मानव को बहुत दूर तक नहीं जाने देगा। यह दिलचस्प बात है कि जब मानव को उन्होंने चांद से धरती पर उतारा तो यह जानने की कोशिश की कि वह कोई रोग तो साथ नहीं लाया है। हमारे यहाँ वैसे भी बहुत से रोग हैं, क्या हम वहाँ भी रोग छोड़ सकते हैं? परमेश्वर ने हमें यहाँ समयबद्ध करके रखा ताकि वह हम पर अपनी करुणा दिखा सके। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 13:5 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और सातवें दिन याजक उसको देखे और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे और उसके चर्म में ना फैली हो तो याजक उसको और भी 7 तक बंद करके रख सकता है। मित्रों, 7 के बाद पुरोहित एक बार पुनः जांच करता और यदि फिर भी अनिश्चितता होती तो रोगी को अगले 7 के लिए बंद किया जाता है। निर्णय लेने में कोई जल्दीबाजी नहीं की गई। किसी दूसरे विश्वासी पर दोष लगाना ईश्वर के सामने एक गंभीर बात है। पौलुस प्रेरित तिमोथी को लिखते हैं, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुन। 1 तिमोथियों की पत्री 5:19 में हम इसे पाते हैं। उसने चेतावनी भी दी कि अंतिम समय में झूठे दोष लगाने वाले आएंगे। जब मैं प्रभु की सेवा में था और एक प्रचारक के रूप में गांव में जाता था, मैंने नियम बनाया कि कोई भी किसी कलीसिया के विरुद्ध दोष लगाने मेरे पास ना आए जब तक वह स्वयं उपस्थित ना हो। क्या आपको मालूम है कि पिछले 21 वर्षों से कितने मामले आए हैं? केवल एक। मित्रों, हमें सावधान रहना है। लय व्यवस्था 13:6 में हम पढ़ते हैं, और सातवें दिन याजक उसको फिर देखे और यदि देख पड़े कि व्याधि की चमक कम है और व्याधि चर्म पर फैली ना हो तो याजक उसको शुद्ध ठहराए, क्योंकि उसके तो चर्म में पपड़ी है और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए। यदि यह संक्रामक चमड़े पर 14 बीतने पर भी नहीं फैला परंतु बेहतर हुआ, तब तो कोढ़ नहीं है और उसे शुद्ध घोषित किया जाए। उस व्यक्ति के लिए अच्छे शब्द थे और वह आनंद के गीत गा सकता था। अब उसे उसके प्रिय जनों से अलग रहने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वह शुद्ध था और वह घर वापस जा सकता था। मित्रों, याद रखें कि प्रभु ने उस कोढ़ी को छुआ जो उसके पास आया था और उसे चंगा भी किया। उससे भी अधिक आत्मिक कोढ़ी लोगों से वे कहते हैं, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। वह शारीरिक रोगों की चंगाई करता यह दिखाने के लिए कि वह पाप क्षमा करने वाला मुक्तिदाता भी है। याद करें कि शास्त्री और फरीसी प्रश्न पूछते हैं, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? इसलिए यीशु ने लकवे के रोगी से पहले कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। तब उसने कहा, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मैं तुमसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु का अधिकार दोनों ही पर है। लूका 5:11-26 में हम इसे पाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था 13:7-8 में लिखा हुआ है, और यदि याजक की उस जांच के पश्चात जिसमें वह शुद्ध ठहराया गया था वह पपड़ी उसके चर्म पर बहुत फैल जाए तो वह फिर याजक को दिखाया जाए, और यदि याजक को देख पड़े कि पपड़ी चर्म में भी फैल गई है तो वह उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ ही है। मित्रों, यह तस्वीर का अंधेरा भाग है। अब तीसरा परीक्षण होगा। क्या परमेश्वर मनुष्य को दूसरा अवसर प्रदान करते हैं? मेरे मित्र, परमेश्वर मनुष्य को हजारों अवसर प्रदान करते हैं यदि वह उन्हें सही तरीके से ले तब। अंत फैसला सुनाना अवश्य है। उस मनुष्य को कोढ़ी घोषित किया गया है। यह बहुत ही भयंकर फैसला है और उसे बाहर कर दिया जाता है। इसकी तुलना उस मनुष्य करें जो कोढ़ के फैसले पर लटक रहा था। उसे बाहर निकाले जाने की संभावना थी परंतु वह शुद्ध घोषित हुआ। उस दिन से वह व्यक्ति कोढ़ी नहीं गिना गया, वह शुद्ध है, शुद्ध जीवन बिताता है। हमारे लिए कितना बड़ा संदेश है। मित्रों, बहुत से लोग हैं जो परिवर्तित होने का दावा करते हैं। वह कुछ समय तक परीक्षण सह लेते हैं परंतु आखिरकार भयंकर पाप रोग में आ जाते हैं, अर्थात पाप रोग फूट पड़ता है और वे उन लक्षणों के कारण स्पष्ट हो जाता है कि वे अशुद्ध हैं। यूहन्ना ने इसकी चर्चा 1 यूहन्ना की पत्री 2:19 इस प्रकार की है, वे निकले तो हम ही में से पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के हैं नहीं। पतरस इनकी तुलना इस प्रकार से करते हैं, 2 पतरस 2:22 में, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। आइए अब हम आगे देखें पुराने कोड का निदान, लय व्यवस्था 13 उसके 9 से 11 पद में लिखा है, यदि कोड किसी व्याधि किसी मनुष्य के हो तो वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक उसको देखे, और यदि वह सूजन उसके चर्म में उजली हो और उसके कारण रोएं भी उजले हो तो उस सूजन में बिना चर्म का मांस हो तो याजक जाने कि उसके चर्म में पुराना कोढ़ है, इसलिए वह उसको अशुद्ध ठहराए और बंद ना रखे, क्योंकि वह तो अशुद्ध है। मित्रों, यह एक पुराने कोढ़ का मामला है, या इसे चीरकालीन कोढ़ भी कहा जा सकता है। इस व्यक्ति को परीक्षण के लिए बंद रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह निश्चित ही कोढ़ी था। कुछ लोग बड़े कठोर पापी होते हैं, यहाँ तक कि उनके मित्र उनके मुंह पर उन्हें पापी कहते हैं। इसी वर्ग में आध्यात्मिक विधि विरोध अर्थात माफिया, हत्यारे और चोर, नाश वस्तुओं का सेवन करने वाले अथवा शराबी लोग आते हैं। ऐसे लोग अपने स्वयं के पापों के गुलाम होते हैं, और ऐसे मामले में केवल दिव्य या चमत्कारिक उपचार ही काम करता है। एक सम्भ्रांत कलीसिया का सदस्य अपने को कभी भी, जिसका उद्धार नहीं हुआ है, कोढ़ी होने पर विश्वास करता है। उसे पतित पापी कहने पर गुस्सा आता है। इससे अधिक किसी कठोर पापी तक पहुंचना उतना कठिन नहीं होता, क्योंकि वह सुसमाचार के संदेश को सहर्ष सुनता है और उसे मानता भी है, और उसे पता है कि वह एक कोढ़ी है। हम लय व्यवस्था 13 उसके 12 से 17 पद में पढ़ते हैं, और यदि कोढ़ किसी के चर्म में फूटकर यहाँ तक फैल जाए कि जहाँ कहीं याजक देखे व्याधित के सिर से पैर के तलवे तक कोढ़ ने सारे चर्म को छा लिया हो, तो याजक ध्यान से देखे और यदि कोढ़ ने उसके सारे शरीर को छा लिया हो तो वह उस व्याधित को शुद्ध ठहराए, और उसका शरीर जो बिल्कुल उजला हो गया है वह शुद्ध ही ठहरे, पर जब उसमें चर्महीन मांस देख पड़े तब तो वह अशुद्ध ठहरे, और याजक चर्महीन मांस को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वैसा चर्महीन मांस अशुद्ध ही होता है, वह कोढ़ है। पर यदि वह चर्महीन मांस फिर उजला हो जाए तो वह मनुष्य याजक के पास जाए और याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि फिर से उजली हो गई हो तो याजक व्याधित को शुद्ध जाने, वह शुद्ध है। यह भाग पुराने कोढ़ी के दूसरे पक्ष की चर्चा करता है। यद्यपि संपूर्ण देह इससे ढकी है, परंतु यह सोचना गलत होगा कि उसे कोई आशा नहीं है। सबसे ध्यान में लेने वाला वाक्य यह है कि यदि रंग सफेद हो गया है परंतु रोगी फिर भी शुद्ध घोषित किया गया है, स्पष्ट है कि कोई भी पापी आशा रहित नहीं है। संभवतः नबी यशायाह ने भी यही कहा, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। इसे हम यशाया 1:5 में पाते हैं। इसके तुरंत बाद महान बैत यह निमंत्रण देता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे, यशाया 1:18 पद में। ध्यान दें कि कोढ़ का एक सच्चा चिन्ह व लक्षण छिली हुई व सख्त चमड़ी है। बाइबल में शरीर के विषय अनेक शिक्षाएं पाई जाती हैं, यहाँ तक कि विश्वासियों में भी शरीर कार्यरत है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। यूहन्ना 6:63 में भी हम पाते हैं, शरीर से कुछ लाभ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, रोमियो 7:18। ताकि कोई प्राणी शरीर परमेश्वर के सामने घमंड न करे, 1 कुरिन्थियों 1:19-15 में, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी न होंगे, इफिसियों 2:3 में, अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे, फिलिपियों 3:3। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उपवास करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते, यहूदा 23। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। मित्रों, उपयुक्त पद से ज्ञात होता है कि वो सख्त शरीर पुराना स्वभाव है जिसका न्याय क्रूस पर हुआ। जब भी किसी विश्वासी में यह प्रकट होता है, परमेश्वर को उसका न्याय करना ही है। शरीर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। केवल जो पवित्र आत्मा विश्वासी जीवन में उत्पन्न करता है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। अब आगे देखते हैं किसी फोड़ा या जलन से कोढ़ का निदान। लय व्यवस्था 13 अध्याय उसके 18 से 23 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यदि किसी के चर्म में फोड़ा होकर चंगा हो गया हो और फोड़े के स्थान में उजली सी सूजन व लाली लिए हुए उजला फूल हो तो वह याजक को दिखाया जाए और याजक उस सूजन को देखे और यदि वह चर्म से गहरा देख पड़े और उसके रोएं भी उजले हो गए हों तो याजक यह जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है जो फोड़े में से फूटकर निकली है और यदि याजक देखे कि उसमें उजले रोएं नहीं हैं और वह चर्म से गहरी नहीं है और उसकी चमक कम हुई है तो याजक उस मनुष्य को 7 दिन तक बंद कर रखे और यदि वह व्याधि उस समय तक चर्म में सचमुच फैल जाए तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है। परंतु यदि वह फूल न फैले और अपने स्थान ही पर बना रहे तो वह फोड़े का दाग है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए। मित्रों, किसी फोड़े की जांच के बाद का वृतांत इन पदों में मिलता है। याजक द्वारा जांच होनी थी क्योंकि कोढ़ का आरंभ वहां से ही हो सकता है। उसी प्रकार जैसा छोटा फुंसी भी कैंसर बन जाता है, नए कोढ़ में भी इसी पद्धति को प्रयोग में लाया गया है। यदि फोड़े पर सफेद बाल हों और चमड़े के अंदर तक प्रवेश पाए तो किसी भयानक समस्या का उभरना निश्चित होता है। 7 दिनों की अवधि परीक्षण से याजक ये सुनिश्चित करता था कि फोड़ा का निर्देश किस ओर है। पुराने पापों का फैलना व दूषित करने का खतरा हमेशा बना रहता है। अक्सर कोई नया धार्मिक व्यक्ति अर्थात नया प्रभु में आए हुए विश्वासी किसी बुरी आदत से छूटने की साक्षी देता है, परंतु कुछ वर्षों बाद वही फोड़ा फिर से दिखाई पड़ता है और यह होता है कि व्यक्ति विशेष जिसका अनुभव ऐसा रहा हो वह अब तक बचा हुआ नहीं भी हो सकता है या सही मायने में वो बचाया गया ही नहीं है। फिर इस प्रकार का फोड़ा अर्थात पुराना स्वभाव पुनर्जीवित हो सकता है। एक सावधानी पूर्वक जांच करना चाहिए और सरसरी तौर पर न्याय की घोषणा नहीं करनी चाहिए। कई वर्ष पूर्व एक शराबी मनुष्य ने मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। वह बीमार पड़ा और मैं उसे देखने गया। मुझे पता चला कि वह सचमुच में रोगी नहीं है। शराब से कमरा महक रहा था। वह रोने लगा और मुझसे चिपक कर बोला, मैं फिर से गिर जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि मेरी जगह शायद कोई और होता तो उसे पैरों से दबाकर खूब पीटता, परंतु इससे उसको तनिक भी लाभ नहीं मिलता। हमें निरीक्षण करना चाहिए और कोढ़ का निदान करना चाहिए, परंतु उस कोढ़ी को बताना होगा कि उसका रोग चंगा हो सकता है। एक बचाने वाला है, हम उसके पास जाकर उसकी भर्त्सना करके डांट डपट कर छोड़कर चले जाएं, इससे उसको और मुझे अर्थात दोनों को बुरा महसूस होगा। किसी की मदद नहीं होगी। उस व्यक्ति को यह जानना है कि एक बचाने वाला है, उसे क्षमा कर सकता है, उद्धारकर्ता उस फूटे हुए कोढ़ से शुद्ध कर सकता है। हम लय व्यवस्था 13 अध्याय उसके 24 से 28 पद में आगे पढ़ते हैं, फिर यदि किसी के चर्म से जलने का घाव हो और उस जलने के घाव में चर्महीन फूल लाली लिए हुए उजला व उजला ही हो जाए तो याजक उसको देखे और यदि उस फूल में के रोएं उजले हो गए हो और चर्म से गहरा देख पड़े तो वह कोढ़ है जो उस जलने के दाग में से फूट निकला है, याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए क्योंकि उसमें कोढ़ की व्याधि है और यदि याजक देखे कि फूल में उजले रोए नहीं और ना वह चर्म से कुछ गहरा है और उसकी चमक कम हुई है तो उसको 7 दिन तक बंद कर रखे और 7वें दिन याजक उसको देखे और यदि वह चर्म में फैल गई हो तो वह उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए क्योंकि उसको कोढ़ की व्याधि है, परंतु यदि वह फूल चर्म में नहीं फैला और अपने स्थान ही पर जहां का तहां ही बना हो और उसकी चमक कम हुई हो तो वह जल जाने के कारण सूजा हुआ है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए क्योंकि वह दाग जल जाने के कारण से है। धर्मशास्त्र की इस शिक्षा को यह सुदृढ़ करता है कि शरीर को निकट जांच के दायरे में रखना चाहिए। मित्रों, ये सभी अवतरण हमें सिखाते हैं कि शरीर की फुंसियों को सावधानी से या जलने के स्थान को सावधानी से लेना है, क्योंकि शरीर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अब हम आगे देखते हैं सिर व दाढ़ी में व्याधि अर्थात कोढ़ का निदान। लय व्यवस्था 13 अध्याय उसके 29 और 30 पद में लिखा है, फिर यदि किसी पुरुष व स्त्री के सिर पर व पुरुष की दाढ़ी में व्याधि हो तो याजक व्याधि को देखे और यदि वह चर्म से गहरी देख पड़े और उसमें भूरे भूरे पतले बाल हो तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, वह व्याधि सिंहुआ अर्थात सिर व दाढ़ी का कोढ़ है। मित्रों, इस बीमारी को पकड़ना कठिन है, लेकिन फिर भी इसकी निगरानी करना जरूरी है। तब हम आगे आते हैं लय व्यवस्था 13 अध्याय के 31 से 37 पद में लिखा हुआ है, और यदि याजक सेहुए की व्याधि को देखे कि वह चर्म से गहरी नहीं है और उसमें काले काले बाल नहीं है तो वह सेहुए के व्याधि को 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक व्याधि को देखे तब यदि वह सेहुआ फैला ना हो और उसमें भूरे भूरे बाल ना हो और सेहुआ चर्म से गहरा ना देख पड़े तो यह मनुष्य मुड़ा तो जाए परंतु जहां सेहुआ हो वहां न मुड़ा जाए, और याजक उसके सेहुए वाले को और भी 7 दिन तक बंद करे, और 7वें दिन याजक सेहुए को देखे और यदि वह सेहुआ चर्म से फैला ना हो और चर्म से गहरा ना देख पड़े तो याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए और वह अपने वस्त्र धो के शुद्ध ठहरे, और यदि उसके शुद्ध ठहरने के पश्चात सेहुआ चर्म में कुछ भी फैले तो याजक उसको देखे, और यदि वह चर्म में फैला हो तो याजक या भूरे बाल न ढूंढे क्योंकि वह मनुष्य अशुद्ध है, परंतु यदि उसकी दृष्टि में वह सेहुआ जैसे का तैसा बना हो और उसमें काले काले बाल जमे हो तो वह जाने कि सेहुआ चंगा हो गया है और वह मनुष्य शुद्ध है, याजक उसको शुद्ध ठहराए। इन पदों से पता चलता है कि यह कोढ़ नहीं है। पुरोहित को चोट घाव की जांच पड़ताल करने में काफी समय देना चाहिए। हम लय व्यवस्था 13 उसके 38 से 39 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर यदि किसी पुरुष व स्त्री के चर्म में उजले फूल हो तो याजक देखे और यदि उसके चर्म में वे फूल कम उजले हो तो वह जाने कि उसको चर्म में निकली हुई चाय ही है, वह मनुष्य शुद्ध ठहरे। इन पदों से पता चलता है कि गंजापन भी कोढ़ नहीं है, परंतु उस स्थान पर कोढ़ फूट सकता है। लय व्यवस्था 13 अध्याय उसके 40 से 44 पद में हम पढ़ते हैं, फिर जिसके सिर के बाल झड़ गए हों तो जानना कि वह चंदुला तो है परंतु शुद्ध है, और उसके सिर के आगे के बाल झड़ गए हों तो वह माथे का चंदुला तो है परंतु शुद्ध है, परंतु यदि चंदुले सिर पर व चंदुले माथे पर लाली लिए हुए उजली व्याधि हो तो जानना कि वह उसके चंदुले सिर पर व चंदुले माथे पर निकला हुआ कोढ़ है, इसलिए याजक उसको देखे और यदि व्याधि की सूजन उसके चंदुले सिर व चंदुले माथे पर ऐसी लाली लिए हुए उजली हो जैसे चर्म के कोढ़ में होता है तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है। अब हम आगे देखते हैं कोढ़ियों के वस्त्रों का निदान। लय व्यवस्था 13 के 45 पद में, और जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। मित्रों, यहाँ पर हमें एक सबक सीखना है, यहाँ तक कि कपड़े भी संक्रामक रोग फैला सकते हैं। इसी प्रकार जिसे भी पाप छूता है वह उसे अशुद्ध हो जाता है। लय व्यवस्था की पुस्तक 13 अध्याय उसके 46 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। पापी इस बात में आनंद लेते हैं कि नरक में उन्हें अच्छी संगति मिलेगी। मित्रों ध्यान दें, कोढ़ी यहाँ अकेला है और वह अलग किया गया है। हम लय व्यवस्था 13 उसके 47 से 49 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिर जिस वस्त्र में कोढ़ की व्याधि हो चाहे वह वस्त्र ऊन का हो चाहे सनी का, वह व्याधि चाहे उस सनी व ऊन के वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में, वह व्याधि चमड़े में व चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में हो, यदि वह व्याधि किसी वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में व चमड़े में व चमड़े की किसी वस्तु में हरी हो व लाल सी हो तो जानना कि वह कोढ़ की व्याधि है और वह याजक को दिखाया जाए, और याजक व्याधि को देखे और व्याधि वाली वस्तु को 7 दिन के लिए बंद करे और 7वें दिन उस व्याधि को देखे और यदि वह वस्त्र तो चाहे ताने में चाहे बाने में वह चमड़े में वह चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में फैल गई हो तो जाना कि व्याधि गलित कोढ़ के हैं। इसलिए वह वस्तु चाहे कैसी ही काम में क्यों ना आती हो तो भी अशुद्ध ठहरेगी। वह उस वस्त्र को जिसके ताने व बाने में वह व्याधि हो चाहे वह ऊन का हो चाहे सनी का वह चमड़े की वस्तु हो उसको जला दे। वह व्याधि गलित कोढ़ की है, वह वस्तु आग में जलाई जाए। और यदि याजक देखे कि वह व्याधि उस वस्त्र के ताने व बाने में व चमड़े की उस वस्तु में नहीं फैली तो जिस वस्तु में व्याधि हो उसके धोने की आज्ञा दे, तब उसे और भी 7 दिन तक बंद करके रखे और उसके धोने के बाद याजक उसको देखे और यदि व्याधि का ना तो रंग बदला हो और ना व्याधि फैली हो तो जानना कि वह अशुद्ध है, उसे आग में जलाना, क्योंकि चाहे वह व्याधि भीतर चाहे ऊपरी हो तो भी वह खा जाने वाली व्याधि है। और यदि याजक देखे कि उसके धोने के पश्चात व्याधि की चमक कम हो गई तो वह उसको वस्त्र के चाहे ताने चाहे बाने में से वह चमड़े में से फाड़ के निकाले। और यदि वह व्याधि तब भी उस वस्त्र के ताने व बाने में व चमड़े की उस वस्तु में देख पड़े तो जानना कि वह फूट के निकली हुई व्याधि है और जिसमें वह व्याधि हो उसे आग में जलाना। और यदि उस वस्त्र से जिसके ताने व बाने में व्याधि हो वह चमड़े की जो वस्तु हो उससे जब धोई जाए और व्याधि जाती रही तो वह दूसरी बार धुलकर शुद्ध ठहरे। ऊन व सनी के वस्त्र में के ताने व बाने में व चमड़े की किसी वस्तु में जो कोढ़ की व्याधि हो उसके शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की यही व्यवस्था है। मित्रों, यह बढ़ाया गया अवतरण है जिसमें कोढ़ी के कपड़ों को कैसे निपटाना है उसकी चर्चा है। कपड़ों की कीमत और विशेषता से कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे अच्छे वस्त्र उतने ही संक्रामक थे जितने सस्ते कपड़े थे। इससे हमें बड़ा सबक सीखना चाहिए और मनुष्य की धार्मिकता ईश्वर के समक्ष फटे कपड़ों के समान है। कोई भी चीज जिसे पापी छूता है वह उसके पाप से घृणित होती है। यहाँ तक कि कम संक्रामक कपड़े ही धोए जाने चाहिए। यह अवतरण में संदूषण के फैलने पर आश्चर्यजनक बोध कराया गया है। हम सब भी अशुद्ध वस्तुओं के तुल्य हैं और धोए जाने की आवश्यकता है, अर्थात हम पापी हैं और हमारे पाप से हमें छुटकारा मिलना चाहिए और इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू की जरूरत है ताकि वह हमें धोए और शुद्ध करे। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने पाप रूपी कोढ़ से छुटकारा पाएं? यदि हाँ तो आज ही प्रभु के पास आइए। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मुसीबत तुम आज दूर कर लो। नहीं